ओम शांति। दो मिनट के लिए स्वयं को चारों ओर से हल्के करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। अकेली आई थी मैं आत्मा, मुझे अकेले ही जाना है। अब मुझे वापस जाने की तैयारी करनी है। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? घर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं? अब हमें सच्चे दिल से वापिस चलने की तैयारी करनी है। जब इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बार बार ये दुनिया हमें भुला देती है, भगवान की बातें मन बुद्धि पर कमजोर हो जाती हैं और जो दुनिया से सीखा है वो हावी हो जाता है, और इस कारण से कभी वैराग्य आता है, कभी फिर से लगाव आ जाता है, कभी वैराग्य आता है, कभी फिर से लगाव में फंस जाते हैं। तो इसलिए अब हमको अभ्यास के द्वारा अपनी स्मृतियों को निरंतर बनाना है, ताकि हम एक सेकंड के लिए भी भूले नहीं कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, अब हमें वापस घर जाना है, अब हमें ये भूलना नहीं है। और इसकी सबसे सहज विधि जो होती है वो है एक दूसरे को याद दिलाना। हम आपको याद दिलाएं, आप हमको याद दिलाएं, याद दिलाते दिलाते अपनी स्मृतियों को पक्का करें। हम यज्ञ के आदि का इतिहास जब सुनते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि शुरू में याद को पक्का कैसे किया, कि एक दूसरे से पूछते थे, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो याद को पक्का किया एक दूसरे को स्मृति दिलाकर। हमारी यादगार कृष्ण लीला में भी गोपियों का जो वर्णन है, गोपियों के अंदर भी यही विशेषता थी कि वो एक दूसरे के साथ कृष्ण के प्रेम की बात करती थी, वो अपना अनुभव सुनाती थी और एक दूसरे को अनुभव सुनाते सुनाते कृष्ण प्रेम में लीन हो जाती थी, सुदबुद्ध हो जाती थी। तो वही सुदबुद्ध खोना वास्तव में बाबा की मुरलियों में भी आपने सुना होगा, सच्चे प्रेम की निशानी वही है। लीन हो जाने की अवस्था का वर्णन वही है। उसमें दिल ज्यादा दिमाग कम चलता है। इसलिए अब हमें एक दूसरे को बार बार प्यार से अटेंशन दिलवाएं कि समय कम रह गया है, आओ कुछ घड़ी मिल करके तैयारी कर लें, ताकि जितना भगवान को पाकर हमें मिलना चाहिए, संगम का जो अंत है वो सुहाना होना चाहिए और हमें लगे कि भगवान को पाकर जितना पाना चाहिए था हमने पाया है। तो कैसा लग रहा है आप सभी को, क्या अनुभव कर रहे हैं? जो सही में कुछ परिवर्तन अनुभव किया हो तो एक तो लिख करके बताएं, फिर हम आज की बात पर आगे चलेंगे। बार बार अपने आप को स्मृति दिलाते रहना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब बाप समान बनना है। बाबा 51 वर्षों से भुजाएं पसारे हुए हमारा इंतजार कर रहा है, अब हमें बाबा की भुजाओं में समाना है। मुझे कर्मातीत बनना है, एक सेकंड के लिए भी मैं भूलूं नहीं कि मुझे अब नए कर्म बंधन आत्माओं के साथ नहीं बनाने हैं। अब मुझे कर्म बंधनों से मुक्त होना है, नए बनाने नहीं हैं, बार बार स्मृति दिलाओ, क्योंकि हमें जाने अनजाने में विकर्म बनाने की आदत पड़ गई है, और वो ऐसी आदत है जो पता भी नहीं पड़ती है कि विकर्म बन रहे हैं। और उसका मालूम कैसे पड़ता है? परिस्थितियों में विचलित होते हैं, छोटी छोटी बातें भी विचलित कर देती हैं। तो जो आत्मा विचलित हो रही, इसका मतलब अभी हिसाब पूरे नहीं हुए। मस्तक छोड़कर आत्मा जल्दी से भाग जाती है, नहीं तो कर्मातीत आत्मा, क्योंकि सबके हिसाब चुका लेती है, फिर उसको मस्तक छोड़कर भागने की इच्छा नहीं होती है। ना तो उसे इस दुनिया के रौनक खींचती है। बाबा मुरली में कहता था कि ये सारी पुरानी दुनिया छी-छी दुनिया है, यहां की अच्छी चीजें भी पुरानी ही हैं, शरीर भी अच्छे भी हों वो भी पुराने हैं, तमो प्रधान हैं। तुम्हें इस दुनिया से नफरत आनी चाहिए, तुम्हारी आंख डूबनी नहीं चाहिए इस दुनिया में। तो कैसे कैसे शब्द बाबा हमें डिटैच करने के लिए सुनाते हैं। अपने अनुभव बता रहे हैं भाई बहन, गहराई का अनुभव होता है। अब जाना है, सच्चाई के साथ अभी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये सत्य पुरुषार्थ हो रहा है, आंतरिक परिवर्तन बहुत हुए हैं, बहुत अच्छा है। अनुभूतियां बढ़ रही हैं, बोल बहुत मीठे हो गए हैं। ठीक ही तो है, आपका तो नाम भी मीरा है, तो और ही मीरा के नाम से ही स्वमान आ जाना चाहिए। और क्या पुरुषार्थ बढ़ रहा है? दिल से करते चले, दिल से डिटैच होते चले। डिटैच, अब घर जाना है। रोज मुरली में सुनते हैं, अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, बच्चे विनाश के नजारे सामने हैं। तो जितना आप ये अभ्यास करते हैं, उतना ही मन आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप लिख भी रहे हैं रोज 108 बार, शुरू में भले ऊपर से लिख रहे हैं उतनी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा वो मैसेज अंतर्मन कैच कर लेगा, और कितनी चीजों को बिना पुरुषार्थ के ही छोड़ देगा। जो हम छोटी छोटी बातों पर पुरुषार्थ करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अब मीठा मीठे बोल हो गए हैं, तो वो अपने आप ये हो जाएगा। अब मुझे जब मन में चली गई बात कि अब घर जाना है, तो अंतर मन को पक्का हो जाएगा। ज्ञान की सत्यता यही है कि आत्मा को अब लौटना है। 5000 वर्ष पूरे हो गए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? ज्ञान का आनंद लेते हैं और जीने की प्लानिंग करते हैं, ज्ञान को सिर्फ जीवन को थोड़ा सा ठीक बनाने में, कंफर्टेबल बनाने में, रिलेशन बिल्डिंग में यूज करते हैं बस। लेकिन रिलेशंस में भी फंसे रहते हैं, रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है पर फंस जाते हैं उसमें। नफरत खत्म हो जाती है पर प्यार में फंस जाते हैं, तो जाने की प्लानिंग फिर छूट जाती है। बाबा शब्द को इस्तेमाल करके कई जीवन में कुछ प्राप्तियां कर लेते हैं, कुछ काम बना लेते हैं, क्योंकि बाबा मदद तो करते हैं। काम बना करके बाबा बाबा शब्द का बोल करके राजी हो जाते हैं, लेकिन उसी बाबा के वो बोल भूल जाते हैं कि बच्चे अब तुम्हें वाणी से परे जाना है। बच्चे कब तक बाप को इंतजार कराओगे? बच्चे अब क्या इस पुरानी दुनिया में ही तुम्हारा दिल लग रहा है? ये बाबा की बातें दिल को छुएंगी कि भगवान हमें वापस कितने धैर्य से बुला रहा है, कितने धैर्य से पढ़ाया है उसने और अभी भी पढ़ा रहा है। देखो लॉकडाउन में भी हमारी क्लासेस बढ़ी हैं, हमारे टीचर ने हमारी तैयारी बढ़ाई है, कम नहीं हुई है। कितना प्यार है बाबा का, वो अभी भी तैयारी करा रहा है। किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि हम लेट आए तो हमारी तैयारी नहीं हुई थी। तो इसलिए स्टडी के हर चैप्टर को बहुत गहराई से अच्छी तरह से पूरा करना है। तो कल हम दो शब्दों के बारे में चिंतन कर रहे थे, एक है मैं, एक है मेरा। मैं और मेरा, ये दो शब्द ही फंसाते हैं, डुबाते हैं, ये दो शब्द ही पार लगाते हैं। दादी जानकी जी हमारी हमेशा बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किसकी, बस हमेशा उनकी बात में यही आता था, क्योंकि इतना पक्का था और इसी में जीवन का समाधान छुपा है अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लें। मैं कौन, मेरा कौन, हमें जो दुख देता है वो कौन दुख देता है, मैंपन या मेरापन? मैं और मेरा ही दो दरवाजे हैं जहां से माया प्रवेश करती है। अगर मैंपन अहम भाव नहीं है और मेरापन यानी लगाव भाव नहीं है, न वस्तु में, न वैभव में, न संबंधों में, तो माया आ ही नहीं सकती है। इसलिए ये जहां जहां मेरे के तार जुड़े हैं वहीं से दर्द दुख आने की मार्जिन होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सब कुछ बाप को सौंप दो, लेकिन कईयों ने तो सौंपा है और जिन्होंने सौंपा है उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव किए हैं और अनुभव कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो अनुभव। लेकिन कईयों ने सौंपा नहीं है, जो सौंपते नहीं हैं उनकी निशानी है वो सोचते हैं, और जो सोचते हैं फिर वो सौंपते नहीं हैं, क्योंकि सोचना माना चिंता करना। मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। हमारी सोच तीन प्रकार से चल सकती है, एक सोच है जो उस दुनिया के कारण हमारे मन में चलती है, वो खींचती है हमको, परमत के प्रभाव से हम खींचे चले जाते हैं। एक सोच है जो मेरे आकर्षण के कारण, जो मेरे अंदर आकर्षण है, सीता जी को अपने मन का आकर्षण था, श्री राम की शरण में थी, लेकिन खुद के मन में आकर्षण आ गया हिरण का, सोने के हिरण का, तो अपने आकर्षण ने उनके संकल्पों को खींचा। तो हमारे मन में या तो संकल्प घर परिवार और बातें घटनाएं हिसाब किताब इनके कारण संकल्प चलते हैं, या जो मेरे अंदर आकर्षण है उसकी तरफ बुद्धि भागती है, मन भागता है, उसके कारण संकल्प चलते हैं। और सारा दिन आप देखेंगे लगभग इसी प्रकार के सोच विचारों में बीत जाता है। लेकिन हुक्मी हुक्म चलाए रहा का मतलब क्या है कि दुनिया की तरफ आकर्षण खत्म हो जाए, दुनिया की चिंताएं खत्म हो जाएं, लेकिन हमें ये महसूस हो कि मेरी जो सोच है, मेरा जो मन है, बुद्धि है, उसकी बागडोर आसमान से कंट्रोल होती है। यानी हर घड़ी एक ऐसा एहसास जिसमें ये लगता है कि आसमान के पर्दे के पीछे बैठा हुआ बाबा वो मेरी सोच को कंट्रोल कर रहा है, यानी वो मुझे सोच दे रहा है। जैसे कठपुतली वाला पीछे से डायरेक्शन देता है, कठपुतली की हर एक एक्टिविटी पीछे से बंधी हुई रस्सियों के द्वारा होती है, जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ वो कठपुतली वाला करता है। ठीक ऐसे ही हमें बाबा की कठपुतली बन जाना है। दादी जानकी जी एक और वंडरफुल बात कहते थे, एक होता है पिजन, एक होता है पैरट, एक होता है पपेट। पिजन अर्थात कबूतर, कुछ ज्ञानी कबूतरों की माफिक होते हैं। कबूतर क्या करता है, हूं हूं तो करता है, गुटर घूं तो करता है, यानी ज्ञान को हूं हूं तो करेगा परंतु अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो एक होते हैं पिजन की माफिक कि जो गर्दन तो हां हां हूं हूं में कर रहे हैं पर ज्ञान अंदर नहीं उतर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। दूसरे हैं पैरट की तरह हैं, पैरट अर्थात जो सुना है वो रट लिया है और बिल्कुल डिट्टो उसको सुना भी देते हैं। जैसे कहानी सुनाते थे हमारे जगदीश भाई जी, जिन्होंने यज्ञ की सारी किताबें लिखी, तोता राम नल पर मत बैठ। एक तोता था, उसको सिखाया तोता राम नल पर मत बैठ, उसने रट्टा लगा लिया, पिंजरे से उड़ा जाकर बोलने लगा तोता राम नल पर मत बैठ, लेकिन खुद नल पर ही बैठा था। तो ये हो गया पैरट क्वालिटी। और तीसरी होती है पपेट क्वालिटी कि मैं तो उसकी पपेट हूं, कठपुतली हूं मैं भगवान की, मेरा हर संकल्प भगवान के हवाले है, मैंने पूरा समर्पण कर दिया है अपने आप को, अब वो जैसे चाहे इसको चलाना वैसे इसको चलाए, यानी ऊपर से निरंतर डायरेक्शन लेने की आदत, हर संकल्प पर बाबा बैठा है बोलने की आदत, हर एक बात पर आसमान की ओर बुद्धि ले जाने की आदत, जिस प्रकार से एक वफादार सजनी जो होती है दुनिया में, गृहस्थी में भी देखा होगा आपने, जो वफादार होती है उसे 10 रुपए की चीज भी अगर खरीदनी होती है तो वो बिना अपने साजन पति, दुनिया में स्वामी परमेश्वर कहते हैं, बिना उसके परमिशन के वो नहीं खरीदती है 10 रुपए की चीज भी। और अगर कभी खरीदी तो सबसे पहले उसको बताती है, इतनी वफादार है। तो हमारे हम भी आत्मा कौन हैं? आत्मा परमात्मा की सजनी है। किसी किसी को सजनी का संबंध समझ नहीं आता है, संतान तो है, वफादार संतान भी यही करती है। सजनी थोड़ी ज्यादा वफादार होती है क्योंकि उसने पूरा जीवन सौंप दिया होता है। संतान भी वफादार होती है, लेकिन अगर संबंध ठीक रहता है तो आप संतान भी अगर समझते हो तो भी आज्ञाकारी संतान कभी अपने पिता से पूछे बगैर कुछ नहीं करेगी, समझ लिए बिना। तो अगर वफादार सजनी हो तो सजनी हर संकल्प पर साजन से पूछेगी, ये पक्का करो। थोड़े दिन में ये आदत पड़ जाएगी कि जो भी अंदर संकल्प चल रहे हैं, जो भी कुछ प्रश्न उठ रहे, कुछ चिंतन चल रहा, हर एक पर बाबा से ही बातचीत करने की आदत, बाबा से ही डायरेक्शन लेने की आदत, अंदर ही अंदर श्रीमत को कैच करने की आदत, भले ही सारी श्रीमत बाबा ने मुरलियों में बताई है, पर वो सही समय पर वो श्रीमत याद आना, ये बाबा के योग से, याद से, उसके प्यार से ही संभव है। नहीं तो गुस्सा करने के बाद याद आता है कि मुझे देवता बनना है, योग में बैठने के बाद समझ में आता है कि दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, फंसना नहीं चाहिए, आश्रम पर जाने के बाद बहुत सी चीजें महसूस होती हैं कि हम गृहस्थी में क्या क्या मनमत कर लेते। तो आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि केवल श्रीमत, श्रीमत में मनमत और परमत का किचड़ा मिक्स नहीं करना है। तो मुझे बाबा चला रहा है, मैं कठपुतली हूं बाबा की, तो जब ये वाला आभास आ जाता है तो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। तो आपको चेक करना है, अभी एक अभ्यास करेंगे हम, कि मेरे अंदर मैं और मेरा, मैंपन के बहुत से रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, ये फिर शब्दों के रूप में निकलते हैं, मैंने किया, आपको बताने का दिल करेगा, अगर कोई काम आपने किया होगा वो किसी और ने क्रेडिट ले लिया, या किसी को गलत फहमी हो गई और किसी और का नाम ले दिया कि इसने बड़ा अच्छा भोजन बनाया है, तो आपका दिल एकदम करेगा कूद करके बीच में बोलने के, नहीं ये ये तो मटर पनीर तो मैंने बनाया है, किसी की समस्या में आपने मदद की होगी कोई काम, तो जब तक उस काम का क्रेडिट ना मिल जाए, नाम ना आ जाए, तब तक बेचैन रहता है मन। किसी की मदद कर दी है, जब तक वो धन्यवाद ना कर दे, नजरें मुड़ मुड़ के देखती हैं उसकी तरफ, जब तक आपका नाम अग्रणी मान शान में ना आ जाए, अखबार में ना आ जाए, सेवाओं में नाम, दूसरों के सामने दो शब्द एप्रिशिएशन के ना बोल दिए जाएं, तब तक भले मुख से कुछ ना बोलें, अंदर कुछ कुछ होता, तो इसका ये मैपन के सूक्ष्म रूप है। मेरा अर्थात कहां कहां मैं जुड़ी हूं। इसलिए आज भी बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। इसको पक्का करना है। चलिए दो तीन मिनट अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सुनने की नहीं, सुनी तो आपने बहुत हुई हैं, अभ्यास करना है। अभी चेकिंग करेंगे अभी एक हम, कि मेरे अंदर मैपन कितना है और मेरापन कितना है, क्योंकि ये मैपन भी दुनिया से जोड़ता है और मेरापन भी दुनिया से जोड़ता है। फिर हम सच्चे वाले मैं और मेरा पर चलेंगे। अब ये मेरापन चाहे धन में है, चाहे वो संबंध में है, चाहे वो अपनी देह में है, देह देह के संबंध, देह के तत्व, देह के पदार्थ, देह के कर्म, इसी में भी अगर मेरापन है, वो आत्मा को मस्तक में टिक करके बैठने नहीं देगा। मेरापन मेरे के पीछे भागती है। किसी मां का बच्चा है, उसको हमेशा रहता मेरा लाडला मेरा बच्चा, दो कदम भी दूर हो गया, एकदम मां पीछे भागी जाती है, क्योंकि मेरापन है। मतलब उसको खींचता कौन है? उदाहरण दिया है कि मन को खींचता कौन है? मेरापन, मेरा। जहां जहां मेरा जुड़ा होगा, बचपन में एक एक दो उदाहरण देके फिर बैठते हैं। बचपन में जिस बच्चे को बड़े प्यार से पाला, जिसके पीछे पीछे भागे दौड़े, उसको चलना सिखाया, पढ़ाया, उसको बड़ा किया, सारा धन उस पर लगाया, भागते रहे 20-25-30 साल उसके पीछे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। लेकिन एक दो साल कुछ ऐसा हुआ आगे बढ़कर कि उस बच्चे ने कड़े हिसाब किताब ले लिए, ऐसे पाठ पढ़ा दिए, वो मेरेपन के तार तोड़ दिए। उसके बाद मन भले दुखी तो होता रहा, लेकिन वो मेरेपन का आकर्षण, मेरेपन वाला जो बचपन का था, वो छूट गया, अब दुख में बदल गया, क्योंकि मेरापन था इसलिए दुख मिला। मेरा बच्चा, मैंने पैदा किया, तो ये मेरा बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए गाया संतों ने ना, क्या लागत है मोर, तेरा तुझको सौंप दो, क्या होवत है सब तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत है सब तोर, सब तेरा है। आज बाबा ने यही कहा, सब बाप का है, सब बाप में है, चलिए पहले हम चेकिंग करेंगे, बैठेंगे सीधे होके बैठे, स्थिर होके बैठे बिल्कुल, चेकिंग बिल्कुल स्थिरता के साथ सच्चाई के साथ करनी है। चैट अब नहीं करेंगे, पूछेंगे तब करेंगे। बंद कर दी है चैट हमने। चेक करो अच्छी तरह से, मेरे भीतर मेरापन कहां कहां है। कहां कहां भागता है मेरा मन, या सारा दिन केवल एक बाबा में ही डूबा रहता है। बाहर दुनिया में केवल कर्तव्य भले हम करते हैं, पर मेरा मन उसमें डूबता नहीं है, निरंतर बाबा में डूबा रहता है। जैसे लैला मजनू में डूबी रहती थी, मीरा कृष्ण में डूबी रहती थी, क्या मैं बाबा में डूबी रहती हूं? ऐसे एकांत में बैठकर पहले चेकिंग करनी है, मेरेपन को चुगना है अंदर से। जैसे हम कमियों को किसी वस्तु में, दाल में या चीनी में या उसमें चुगते हैं, वो चुगना है पहले अपने अंदर से। कहां कहां कमी है, कहां कहां फंसी है मेरी मन बुद्धि, क्या कहेंगे बताइए? मेरेपन कितने हैं दिखाई दिए, या फिर बाबा में डूबे रहते हो? फिर इसके बाद डूबने की विधि बताएंगे। वर्षा जी कहती हैं अभी मंजिल दूर है, बस अब लगन लगा लो, नजदीक पहुंची हुई है। दूर है आपकी बात ठीक है, लेकिन अब लगन लगा लीजिए, बस मंजिल पहुंच जाएंगे। और क्या क्या मेरापन दिखाई दिया? बहुत है। घोषाल सुब्रता घोषाल जी लिख रही, सूक्ष्म चेकिंग की तो दिखाई दिया, कहाँ कहाँ चिपके हैं, कहीं लौकिक में कहीं पर, बहुत है बहुत है। ठीक है, किसी ने पुरुषार्थ किया है तो कभी कभी भागता है। कई बार अपने आप फील नहीं होता और दूसरों को साफ दिखाई देता है। अपनी देह का, किसी को, संबंधों का, बेटे का, देखो ये है। एक कहानी सुनाई जाती है कि एक राजा ने पूछा कि भाई मेरे राज्य में कितने समझदार लोग हैं। उसको अहंकार था, मेरे राज्य में बहुत समझदार लोग हैं। तो उसके वजीर ने बोला कि तुम्हारे राज्य में बहुत कम समझदार हैं। तो उसने उसके सिद्ध करने के लिए बोला, एक दिन के लिए अपने भंडारे खोल दो और अपने पूरे राजधानी वालों को बोल दो, शाम के 6 बजे तक। उन्होंने थोड़ी दूर पर रख दिया भंडारा, बना दिया वो कहीं स्टोर, कि शाम तक जो ले लेगा सूर्य छिपने तक, तो वो जो मर्जी चाहे ले सकता है। तो प्रजा चली, लेकिन थोड़ी दूर गए थे तो बहुत सुंदर झरने, झील और बड़ा सुंदर दृश्य था। तो कहीं वहां रुक गए, थोड़ी आगे गए तो वहां पर कुछ और बहुत आकर्षण की चीजें थी, झूले लगे थे, मेले लगे थे। कुछ ने कहा अभी तो शाम को है, अभी थोड़ा और यहां टाइम बिता देते हैं। थोड़ा आगे गए तो नर्तक मंडली थी, नृत्य हो रहा था। तो कुछ वहां पर बैठ गए कि अभी तो शाम को पहुंचना है। करते करते ऐसे अनेक दृश्य आए, साइड सीन्स बाबा जिनको कहता है। शाम को दरवाजे पर जब पहुंचे तो सूर्य छिप चुका था। केवल कुछ गिने चुने ही, जिन्होंने रास्ते के इन साइड सीन्स को नहीं देखा और उन्होंने सिर्फ खुले हुए भंडारों को देखा, वो समय पर पहुंच गए। ये कहानी वास्तव में हमारी संगम की है। बाबा ने भंडारे खोले हैं, लेकिन फिर भी ये साइड सीन है, परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, कुछ जिम्मेवारियां जरूरी हैं, कुछ हमने फालतू ज्यादा बनाई हुई हैं, मन के आकर्षण में, मेरेपन में ज्यादा बना ली हैं। तो अभी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। संबंधों में बहुतों की बुद्धि फंसी है। भगवान के नाम का झंडा तो उठाया है, पर निश्चय कहीं अंदर से देहधारियों पर है, भय पैदा करता है ये। तो ये बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। और उसको फिर देखिए बाबा क्या कहते हैं। ठीक है, अभी चेकिंग तो अच्छी की, आप सभी को बधाई हो, अच्छी चेकिंग करने के लिए बधाई है। लेकिन अभी बाबा देखो क्या कह रहे हैं। मुरली आज की हम थोड़ी सुनाते हैं आपको। बाबा कैसा रहने के लिए बोल रहे हैं। नंबर एक तो बाबा कलयुग के अंत में आए। क्यों आए? क्योंकि बाबा को पता है कि हमारी क्या हालत हुई पड़ी है, और बाबा को अच्छी तरह से पता है कि बच्चों के साथ क्या क्या हिसाब किताब है, राइट? और उसके बावजूद थोड़ा ध्यान से चिंतन करना, हमने कैसे इस पर विजय पाई, चिंता पर, व्यर्थ चिंतन पर, इन बातों पर विजय कैसे पाई कि बाबा क्यों कहता है हल्के रहो, जबकि मेरे साथ इतनी समस्या चल रही, मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा, मेरा किसी संबंधी ने नुकसान कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, मेरा हुआ, हमारे साथ भी सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं क्या बच्चे, जब जब बाबा की मुरली सुनो तो बाबा हमेशा कहते हैं हल्के रहो। तो चिंतन किया जब, तो ये विचार आया, आप सुनिएगा, विचार आया कि क्या बाबा को नहीं पता कि मुझ आत्मा के इतने हिसाब किताब चल रहे हैं, ऐसे फंसी हुई हूं आत्माओं में, लेन देन में, हिसाब किताब में, संबंधियों में, सब पता है उसको, सब पता है। सब पता होने के बावजूद भी आपके ऊपर 25 लाख का ऋण किसी कारण से हो गया, चाहे वो लॉस के कारण, चाहे अपनी बुद्धि के गलत निर्णय के कारण। उदाहरण दे रहे हैं, और आप बाबा के पास गए, मानो बाबा आपके सामने आ जाएं, उसी दिन मुरली चलाएं आपके सामने, बाबा फिर भी क्या कहेगा, बच्चे खूब सोचो, टेंशन करो या हल्के हो जाओ, आराम से सोचना, तब समाधान दिखाई देगा, सूत उलझा हुआ है सोच का। बाबा कहते बच्चे सब बाप के हवाले कर दो। तो चिंतन किया, वास्तव में हवाले करने में ही समाधान छुपा हुआ है। आज की मुरली सुना रहे हैं आपको, सदा स्वयं को, आराम से सुनेंगे, आराम से सीधे होके बैठ जाओ पहले, क्योंकि ये बात सिर्फ कान से नहीं दिल से सुनने की है। कानों में, कानों के जरिए दिमाग में तो बहुत कुछ भरा हुआ है हमने, लेकिन अभी सीधा दिल से सुनिए भगवान के महावाक्य। भगवान सुना रहा है, सीधा दिल से सुनिए क्या कहता है। ओके, ठीक है, 5-7 मिनट के लिए आपके जीवन के सारे समाधान दे रहा है बाबा। स्थिर होके सुनेंगे तो बात दिल में जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। दोबारा पढ़ रहे हैं, अब ये आपको सोचना है कि आपको मन वाली मत माननी है जो आपकी अपनी है, या श्री मत वाली माननी है जो भगवान की है। मैं सबसे पहले इस मुरली का लास्ट महावाक्य सुना रहा हूं, बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन लो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। आपको बड़ी सावधानी के साथ इस दुनिया के द्वारा पढ़ाए हुए पाठ अपनी मन मत से निकालने हैं। मीठी आत्माओं, प्यारे भाइयों बहनों, मन मत और परमत के सूक्ष्म किचड़े मिलाकर हमने श्रीमत को खिचड़ी मत बनाया है। श्रीमत में थोड़ी मिलाई मन मत, थोड़ी मिलाई पर मत का खिचड़ा और बन गई खिचड़ी। और खिचड़ी मत से स्थिति भी है खिचड़ी। अच्छा लडोल क्यों नहीं, सदा हल्के क्यों नहीं, कंडीशनल हल्के हैं। आज हमारे साथ चीजें ठीक चल रही, हम हल्के हैं। छोटी सी चीज, कितनी छोटी, कई बार एक्सपेरिमेंट किया है, बाहर से आश्रम के बाहर से जूता उठा के भाग गया कुत्ता, प्रैक्टिकल हुआ ये एक बार, इतने में ही मन विचलित हो गया, योग डिस्टर्ब हो गया, भारीपन आ गया। सिर्फ छोटी सी बात, परिस्थिति, उसने ये बोल दिया, भारी हो गया मन, दिन खराब, तो मीठे भाई बहनों बाप की बात सुनो, सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। देखो क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए, दिल में ले जाइए इसको। भगवान हाथ पसारे तेरे द्वार खड़ा, भगवान भगत भर दे रे झोली। वो झोली पसार के कहता है, जो तुझे भारी कर रही जिम्मेवारियां बाप को दे दो, अपना बोझ बाप को दे दो तो हल्के हो जाएंगे। यानी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा, चाहे वो आपके पास्ट के कर्मों के कारण ही हुआ है, जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। अगर किसी केस को सुलझा नहीं पा रहे, देहधारियों को समझा नहीं पा रहे, चिंता नहीं करो, भगवान की कोर्ट में लेके जाओ बात को। जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब कुछ तुमने ही किया है हे आत्मा, जो भी भोग रहे हो वो सब तुम्हारी ही किया धरा है, कुछ इस जन्म का तो कुछ भूले बैठे हो पिछले जन्म का, पर है सब कुछ तुम्हारा ही। जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, वो करेगा जो तू नहीं कर पाया, वो भगवान करेगा, निश्चय करो। बाबा बोले, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। बुद्धि से सरेंडर होना माना अपनी अक्कल ना चलाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, ध्यान से सुनना, आज इसको लिखो, सब बाप का है। थोड़ा है या ज्यादा है, कईयों को ज्यादा दुखी कर रहा, कईयों के पास कम पड़ रहा वो दुखी कर रहा, सब बाप का है और सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। आज अभ्यास करना है, लिख लिख करके मेहनत करो थोड़ी सी, सब बाप का है, सब बाप का है, सब बाप का है। समस्याएं भी बाप की हैं, जो बात टेंशन दे रहे, आपके केस कोर्ट केस होंगे कईयों के, वो भी बाप के हैं। वो हर चीज मांग रहा, तुम्हारी बच्चों की जिम्मेवारी भगवान उठाए तो कितना अच्छा है, परंतु तुम देते नहीं हो, तुम्हें भगवान पर निश्चय नहीं है, तुम्हें लगता है मेरे सोचे बिना कैसे होगा, सोचना तो मुझे ही पड़ेगा, इसलिए भारी होते हो। ये उनके लिए है जो भारी होते हैं। ये सूक्ष्म अहंकार है कि भगवान तुम्हारे जिम्मेवारी लेने के लिए खड़ा है और तुमने भगवान को खड़ा किया हुआ है। डबल लाइट अर्थात स्वभाव संस्कार का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, तब कहते हैं हल्का, डबल लाइट। फिर बाबा ने कहा ऐसा लगे इतने हल्के हो जाओ, ध्यान से सुनना मीठे भाई बहन, बाबा की वाणी अगर दिल से सुनोगे तो आज ही उतर जाएगी दिल में। बाबा कहता है इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के कि दूसरों को लगे कि लाइट जा रही है, कोई लाइट जा रही है। इतने हल्के हो जाना है, चलो बैठिए, समय थोड़ा पड़ जाता है, गहराई में जाओ। कल हम बाबा के प्यार पर लेंगे कि हमें कर्मातीत बाबा का प्यार बनाएगा, कल हम प्रेम की मंडली लगाएंगे। तो आज हल्के हो जाओ, सब बाबा को सौंप दो। इसलिए गीत मत सुना करो, गीत दिमाग में गूंजते हैं, खुद योग किया करो, खुद बात करो, खुद दिल को समर्पित करो। चलो 3-4 मिनट सब हल्के हो जाओ, बिल्कुल संकल्पों का भी बोझ नहीं, एक ही साधन सब तेरा, मेरा को तेरा कर दो, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। माया ने दिवाला निकाला हुआ है, जिसका दिवाला निकल जाता गवर्नमेंट में सरेंडर कर देता है। सरेंडर कर दो ईश्वरीय गवर्नमेंट में, बाबा के सामने बचा लेगी। बाबा मैं तेरी हूं, सब कुछ तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। क्या करूं कैसे करूं, अगर ये प्रश्न है ये भी बोझ है। तुम्हें इतना भी सोचना नहीं है, बापा बैठा है, शांति। अभी सबसे पहले वो लिखेंगे जो हल्के अभी भी नहीं हो पाए, और बाकी मत लिखें। जो हल्के हो गए हैं, हो रहे हैं या हैं, वो मत लिखो, हमें उनकी मदद करनी है जो नहीं हो पा रहे हैं। बाबा इतने प्रेम से बाबा 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 प्रेम से सुनाने पर भी उनके दिलों में कुछ और भरा है, वो लिखें, वो लिख। कईयों का तो गंध साफ हो गया होगा, माफ कर दो सबको, साफ करो दिलों को, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, सबको माफ कर दो, हल्के हो जाओगे, किसी से बदला लेने की कामना मत करो। जो अभी भी हल्के नहीं हो पाए वो लिखो जल्दी से, समय हो रहा है। निश्चय को कैसे बढ़ाएं, पूरी क्लास यही तो चल रही। इस चैनल पर पीछे जाके प्यार की क्लास सुनिएगा। निश्चय केवल ये है, बाबा मिला है, क्लास सुनो पीछे जाकर के, दिल और दिमाग की और बाबा का प्यार कैसे बढ़ाएं क्लास चली है, पूरी सुनिए समय निकाल कर, निश्चय बढ़ेगा आपका। चलिए कुमारी डाई जी, नहीं हुए हैं तो बाबा के पास धरना दे दो, आज पूरा दिन बाबा के पास बैठो। कोर्ट में निकालते हैं टाइम, पूरा पूरा दिन निकल जाता है कोर्ट में खड़े खड़े, आज बाबा के पास बैठ जाओ, केस सुलझ जाएगा तुम्हारा और बाकी काम थोड़े बहुत पोस्टपोन कर लेना, आगे पीछे कर लो, पर काफी समय बिताओ बाबा के पास। हाँ शिरोमणि जी, बैठो बाबा के पास, बस एक ही समाधान है, और कहीं ढूंढो मत, देहधारियों से और पूछो मत, फाइनल बता रहे आपको, मुरली में सब कुछ है, केवल दिल से सुन लो उसको, मुरली पढ़ लो दो चार बार आज की, दिल को लग गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। सब कुछ बाप में है, बस आपका कुछ नहीं है, सब मैंने बाबा को दे दिया संकल्पों सहित। अब बाबा क्लास में बता चुके हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते, तो इसलिए सब बाबा का है, बाबा ही मुझे चला रहा है, मैं निमित्त होके चल रही हूं। आप अभ्यास करो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अजीत कौर जी हल्के नहीं है, बाकी सब इनको दुआ भी देंगे साथ में मन से। हाँ अभी बाबा शब्द में मिठास लाओ, मेरा बाबा मीठा बाबा, ये लिखो मेरा बाबा मीठा बाबा। ये संसार का सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र है, इसको समझ लीजिए, प्यार से लिखो। बड़ा देहधारियों को प्यार से बोला है, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा वो, अरे मेरा बाबा, प्यार से बोलो, बेड़ा पार है, सबने बेड़ा डुबाया है देहधारियों ने, और भगवान पार लगाएगा। चलो ओके, ओम शांति।